رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 7 habits successful teens की क्लास में हम आज अगले स्टेप पे चलेंगे. अभी तक जो कुछ हमने कवर किया उसको एक नज़र से गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके से एक इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी अपनी ही खुद साख्ता मुश्किलात का शिकार होता है और वो सोच ये रहा होता है कि दूसरे उसके मामले में सिंसियर नहीं है और वो दूसरों से खैर नहीं पाता. और इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से 7 रोड़े रास्ते से हटा दिए जाएं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी जन्नत बन सकती है, शर्त यह कि कोई हमारी मदद कर दे उन चीज़ों को वाज़े करने में. तो इसमें हमने देखा था कि लाइफ फॉर टीन्स इज़ नो प्लेग्राउंड. ज़िंदगी कोई खेल का मैदान नहीं है. मत सोचिए कि जवान है तो खेल कूद के लिए आएँ. टीन्स में आप अपने आप को लिख लें, क्योंकि टीन से मुराद है कि जिसके हौसले जवान हैं. उम्र का टीन एज होना कोई बड़ा बात नहीं होती जब तक बंदे का हौसला ना हो. ये ज़िंदगी जो है ये बहुत कुछ देने के लिए आई है. जैसे बचपन में लोग खेलते थे भूल भुलैया, इधर से निकलो उधर जाओ, कभी आप एक जगह से निकल रहे होते हैं फिर दूसरी जगह पे आप फंस जाते हैं, कभी आप बिल्कुल एंड पे गए होते हैं और आप कहते हैं बिल्कुल निकल गए लेकिन आपको पता चलता है जी इधर तो कोई रास्ता ही नहीं, फिर पूरा बैक ट्रैक करके वापस आते हैं. बिल्कुल इसी तरह जवानी की ज़िंदगी जो होती है इसमें अगर इंसान को सही रास्ता ना मिले तो फिर वो बहुत पीछे चला जाता है. माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग में मदद करें, क्या बेहतर है उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें. ये 7 हैबिट्स जिन पे आजकल हम बातचीत कर रहे हैं उसको एक इंसान की ज़िंदगी के इर्द गिर्द चिपकाया गया कि ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब होती हैं. फिर उसके बाद नेविगेशन नेसेसिटीज़, यानी क्या नेविगेट करती है चीज़, कैसे आपको अपनी डायरेक्शन पता चले, क्या चीज़ है जो यंग एज में बंदे की चॉइसेस पर इफ़ेक्ट होती है. क्योंकि हम बच्चों को सोच नहीं देंगे तो वो बिल्कुल हमारे जीना धोबर कर देंगे, और वो चीज़ है प्रिंसिपल्स. हम अगर अपनी जवानी में हैं अभी या अगर हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जिस चीज़ का तोहफ़ा दे सकते हैं ना वो प्रिंसिपल्स हैं. अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कोई बाप अपने बच्चे को जो बेहतरीन तोहफ़ा देता है तो उसमें हुस्न खुल्क, अच्छे अदाब, गुड मैनर से बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं. और ये जवानी में नहीं पता चलता, पता कब चलेगा, जब आप बूढ़े होंगे. जैसे कि आप में से कुछ लोग अब जो जवानी से ऊपर जा रहे होंगे उनको रिग्रेट होता होगा और होना चाहिए कि हमने इतनी ज़िंदगी में क्यों ये चीज़ें नहीं अपनाई कि जो हमारी कामयाबी की दलील बनती. तो प्रिंसिपल्स पे जो ज़िंदगी बेस्ड होती है ना, असूल पसंद होना, आप ज़िंदगी में सिर्फ खाने नहीं आए पीने नहीं आए. बस दफ़ा हमारा एक ही गोल होता है बच्चे खा लें बच्चे खा लें, कमज़ोर हो गए हैं, दूध नहीं पीते, गोश्त नहीं, ये बच्चा खाता, ये ऐसा है, बहुत टीवी देखता है, इसकी नज़र कमज़ोर हो गई. आप फील करेंगे कि बाज़ दफ़ा बच्चों की सिर्फ ज़ाहरी हेल्थ ही के बारे में माँ बाप जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं. छोड़ दीजिए, अल्लाह पाल लेगा, वो रब है, उसका आपसे ज़्यादा फिक्र है. जिसने माँ के पेट में बच्चे को पाला वो बाहर भी पालेगा. इस वक्त अगर आप सब अपनी गलतियों का और अपनी कमियों का इजाला करना चाहते हैं तो अपनी इसलाह के साथ साथ अपने छोटों की इसलाह करें. बच्चे नहीं हैं तो किसी के बच्चे को ले लें, छोटे बहन भाइयों को ले लें, देवरों को ले लें, नंदों को ले लें, किसी एक बच्चे को एक ऐसा अच्छा मैनर सिखाइए कि वो आपके लिए सदका जारिया हो. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव टीन. इफ़ेक्टिव टीन कौन होता है? हमने जैसा कि पहला ही अमल देखा अपने इस पूरे सेशन में कि वो मुस्बत मिजाज होता है, प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव कहते हैं कि इंसान चीज़ों को गलत तरफ ना ले, नेगेटिव माइंडेड ना हो, हर चीज़ को अपने खिलाफ ही ना समझे. जवानी में ये आदत बहुत आम हो जाती है, हर चीज़ पर गुस्सा आता है. वही बच्चे जो माँ बाप के गले में बाहें डाल के बातें करते हैं वो भी चिड़चिड़े होने लगते हैं. तो उस वक्त बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि आप अपनी सोच को सीधा करें, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है या आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा. सेकंड चीज़ कि मंजिल का तयन करके आगे निकलो, वेयर आर यू गोइंग, ये है दूसरा मरहला. फिर इसके बाद इंसान किसी एक चीज़ को एक एंगल से देखता है लेकिन वो बिल्कुल दूसरे एंगल से होती है. तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इंसान का और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसका यकीन जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है. आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे या आपके यंग्स की ज़िंदगी अच्छी गुजरे तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुरुस्त करना पड़ेगा, और जिसको इस्लाम बिलीफ कहता है. फिर इसके बाद टू शो रिगार्ड और वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग, यानी कोई बंदा किसी चीज़ की वैल्यू क्या है उसका रिगार्ड दिखाने के लिए जो चीज़ लाजिम है वो है रिस्पेक्ट. दूसरी खूबसूरत चीज़ जो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से फोकस करें, रिस्पेक्टफुल होना। रिस्पेक्ट ज़िंदगी में कामों को आसान कर देती है। जिसके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट नहीं रहती ना, हमारे बिहेवियर में भी नहीं रहती। इसके बाद इमोशनल बैंक अकाउंट, बहुत डिटेल से हमने इस पर बात की थी कि किन चीज़ों से हमारा अकाउंट बढ़ जाता है और किन चीज़ों से हमारा अकाउंट कम हो जाता है। हमारे बैंकों की तरह हमारी पर्सनैलिटी में भी हमारे अकाउंट्स हैं, उसको चेक किया करें। सेविंग्स अकाउंट कितने हैं, किन चीज़ों से आपके अंदर खूबियाँ बढ़ रही हैं और कुछ विथड्रॉल्स भी हैं, यानी बुरी बातें, और इसका हमने डिटेल से देखा था कि वादा करके तोड़ देना और इस तरह की चीज़ें हमारी शख्सियत में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। फिर उसके बाद पर्सनल बैंक अकाउंट्स में की प्रोमिसज टू योर सेल्फ, खुद से जो वादा करें इसको पूरा करें। डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी के साथ भी मेहरबानी कीजिए। बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने ऊपर नरमी रखें, हार्श ना हो। बी ऑनेस्ट इन ऑल योर डीलिंग्स, अपने हर मामले में सिंसियर हो जाएं, कभी भी किसी को ट्रैप ना करें। इन्हेंस योर टैलेंट्स, हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश में रहें। कंप्यूटर सीखें, गाड़ी सीखें चलानी, स्विमिंग सीखें, जो नहीं आता सीखिए वरना पीछे रह जाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, कुछ रेस्ट दें खुद को। रेस्ट से मराज ले डाउन होना नहीं है, मेंटली पुरसकून होना है। फिर थिंक पॉजिटिवली एंड यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके अकाउंट को बहुत भर देंगी। फिर हम देखेंगे क्या विथड्रॉल्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी या हमारी शख्सियत की साख या उसकी धाक लोगों से कब उठती है। नंबर एक, ब्रेक प्रोमिसज टू योर सेल्फ, जब हम खुद से वादे कर करके तोड़ते हैं। खुद से पूछते हैं, कितनी दफ़ा क्या अब मैं इस बात की कोशिश करूँगी, अब मैं अपने आप को इसमें बेहतर करूँगी, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही हो जाता है। तो वादा टूटा तो इससे हमारी शख्सियत में एक क्रैक आ गया। फिर आइसोलेट योर सेल्फ, खुद को अलग रखना, अलग थलग रखना, खुद पसंदी का शिकार है या तन्हाई का शिकार है। तीसरी चीज़, पुट योर सेल्फ डाउन, अपने आप को ह्यूमिलेट करना, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो शराबी हूँ, मैं तो बापी हूँ, इस तरह के जुमले बोलना जिससे लोगों की नज़रों में आपकी बुराई है। फिर नेक्स्ट थिंग, थिंक नेगेटिवली एंड यूज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में गलत सोचना, नेगेटिव थिंकिंग और गलत बातें करना, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या किया हुआ गुनाह, मैं तो इतनी गुनाहगार हूँ, और ऐसे ही अपने आप को नीचे गिराना कि जिससे दूसरों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट ना रहे। बी डिसऑनेस्ट विद योर सेल्फ, खुद से गैर ईमानदार होना। निगलेक्ट योर टैलेंट, जो खूबियाँ हैं उसको ज़ाया करते जाना और बेकार किस्म के कामों में लगते रहना। फिर वियर योर सेल्फ आउट और एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी परफेक्ट। फिर इसी तरह एक हमारा रिलेशनशिप बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स होता है, जो हमारा दूसरों के साथ ताल्लुक अच्छा करते हैं। इस पर आगे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, क्या करें, कैसे हमारे दूसरों के साथ ताल्लुक अच्छे हों या ट्रस्टवर्दी कैसे बने, लोग हमारे ऊपर एतमाद कैसे करें, लोगों का एतमाद हम कैसे हासिल करें। कीप प्रोमिसज टू अदर्स, जो वादा करें उसको पूरा करें। छोटा सा काम नेकी का ज़रूर किसी के लिए करें, लॉयल हो जाएं, यानी किसी के साथ नमक हरामी ना करें, अगर वो हैं तो भी, नहीं है तो भी। लिसन एक्टिवली, सुस्ती के साथ किसी बात को ना सुने बल्कि आपके सुनने के अंदाज़ में मानने की कैफियत हो। से यू आर सॉरी, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, सीधी सीधी एक्सपेक्टेशंस लगाएं, लोगों से वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना लगाएं जो वो नहीं पूरी कर सकते या आप नहीं कर सकते। और अलाउ अदर्स टू बी डिफरेंट, दूसरों को भी थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। फिर कुछ विथड्रॉल्स हैं, ब्रेक प्रोमिसज, कीप टू योर सेल्फ, गॉसिप एंड ब्रेक कॉन्फिडेंस, डोंट लिसन, बिल्कुल उसके अपोजिट हैं ये। बी एरोगेंट और सेल्फ फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। एक सर्कल है बिल्कुल, इन 7 हैबिट्स को जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, इसका हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है। सबसे नीचे डिपेंडेंस, यानी आप बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। दूसरा बीच का लेवल क्या है, इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ही आज़ाद है। और तीसरा क्या है, इंटरडिपेंडेंस, कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं खुद कुछ करते हैं। लेवल में सबसे ऊपर कौन सी चीज़ है, इंटरडिपेंडेंस। ना तो बंदे को टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए और ना टोटल इंडिपेंडेंट होकर कोई पूछे भी ना कहाँ गए थे और क्यों गए थे। हाँ, हमारी ज़िंदगी किन चीज़ों से मिलके बनती है, जब हम कुछ कुछ दूसरे पे डिपेंड करें और कुछ खुद को देखें। फिर इसमें बी प्रोएक्टिव, ये हम देख चुके हैं, ये किस्म का मंशूर है, आपने देखा होगा डिफरेंट एंगल्स को जोड़ के जो एक ट्रायंगल बनता है वो मंशूर होता है। तो बी प्रोएक्टिव हमारा पहला था, दूसरा था बिगेन विद द एंड इन माइंड। आज हम देखेंगे तीसरी लाइन को, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले। इसको हम पीछे भी एक टाइम मैनेजमेंट में कर चुके हैं कि अहम चीज़ों को सामने रखिए। ज़िंदगी में बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कब कौन सा काम करना है और कब नहीं करना। ये वो तीसरा असूल है जो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी में बहुत ज़्यादा मददगार होगा और इंशाल्लाह हम इसमें मदद लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक डायग्राम है, आप अपने नोट्स में बनाइए। जो लोग सुन रहे हैं सिर्फ वो देख लें कि एक दायरा बना के फिर बाहर एक और दायरा बना लीजिए। पहले बाहर के दायरे में लिखा हुआ है सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। हमारी ज़िंदगी का कुछ ऐसा मामला आता है जिसमें हमारा कोई काबू नहीं है। मसलन नंबर एक बर्थ प्लेस, मैं कहाँ पैदा हुई, आपने भी नहीं अपनी मर्ज़ी से चुनी, राइट। दूसरी चीज़ वेदर, आज सर्दी हो के गर्मी हो मेरे बस में तो नहीं है, ना आपके है। तीसरी चीज़ हमारे पेरेंट्स, हम किन के घर में पैदा हों हमें नहीं पता, ठीक है। चौथी चीज़ व्हाट अदर पीपल से एंड डू, दूसरे क्या करते हैं और क्या कहते हैं इस पे भी मेरा और आपका काबू नहीं। हमें कोई भी कुछ कह दे हम चुप ही कर सकते हैं, सब्र कर लेंगे, लेकिन हम उसके आगे से बोल नहीं सकते। ये है वो सर्कल हमारी ज़िंदगी का जो आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं आप कुछ नहीं कर सकते। अमूमन लोग इसका शिकवा करते रहते हैं और उनको ऐसे लगता है कि बस हमारी सारी नाकामियों की वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ और गर्मी बहुत क्यों होती है हमारे मुल्क में और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अनपढ़ क्यों थे और लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकी। अंदर का दायरा जो आपके बिल्कुल करीब है और छोटा है वो क्या है, सर्कल ऑफ कंट्रोल। आप उर्दू में इसको लिखिए कि आपकी ज़िंदगी का वो दायरा जो पूरे का पूरा आपके काबू में है। कौन सी चीज़ें आपके काबू में, नंबर वन आवर सेल्फ्स एटीट्यूड, हमारा रवैया, हम क्या बोलें, ऊंची बोलें क्या ऐसा बोलें, झूम झूम के बात करें या सीधे सीधे बात करें, हम किसी के साथ गुस्से की बात करें, नरमी की करें, ऊंची बोलें ऐसा बोलें, यानी 110% हम अपने काबू में हैं। अब मैं बोल रही हूँ ना, मैं खामोश हो गई, मैं नहीं बोली, मैं अपने काबू में, आप मुझे बुलाएं मैं नहीं बोलूँगी, 10 दफ़ा भी कहेंगे मैं नहीं बोलूँगी, मैं कब बोलूँगी, जब मैं बोलना चाहूँगी, तो मेरा काबू है। ये देखिए मैं आप सबको देख रही हूँ, आंखें बंद कर ली, मैं आपको नहीं देख रही, मेरी मर्ज़ी है मैं गलत चीज़ देखूँ ना देखूँ, आप सारे गलत बातें करें मैं कान बंद कर लूँगी, मैं नहीं सुनती, मेरी मर्ज़ी है, तो मेरे ऊपर कितना कंट्रोल है मेरा। कभी आप सोच के देखें तो अल्लाह ताला ने हमें कितना पावरफुल बनाया है अपने बारे में, अपना थिंकिंग पॉइंट हम सोच सकते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमारे अपने कंट्रोल में है वो हमारी चॉइस है, पसंद और नापसंद। अच्छी चीज़ों को पसंद कर लें या बुरी चीज़ों को पसंद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छे दोस्त चूज़ करें बुरे दोस्त चूज़ करें, आप इधर आके कोर्स करने का फ़ैसला कर लें, आप इस दिन बाज़ार जाने का फ़ैसला कर लें, आप बिस्तर पर पड़े सोते रहें या आप कुरान के लिए आ जाएं, आपकी मर्ज़ी है, कोई हमें नहीं रोकता, कोई इस पर हमारे बाहर के किसी के कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते। और आप कहेंगे नहीं हमें तो रोकते हैं, कोई नहीं रोकता आपको, आप ख़ुद को यकीन दिलाएं कि आप ख़ुद रुकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, आपने जो करना होता है आप करके रहते हैं, आपने जो कराना होता है आप करा के रहते हैं। इस तरह अपने से बात किया करें, चलो सीधे हो जाओ, ऐसे ही ना बात करा करो दूसरे के ख़िलाफ़, ऐसे ही ना दूसरे के ऊपर अपना नज़ला डाल दो, तुम खुद नहीं आना चाहती, तुम खुद नमाज नहीं पढ़ना चाहती, बच्चों का बहाना लगाती हो, इस तरह आप अपने आप को डांटेंगे, थोड़े दिन में आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो हमारे पूरे कंट्रोल में है वो रिस्पॉन्सेज हैं। किसी ने आग लगाने वाली बात की, आप अपना रिस्पॉन्स अपनी मर्ज़ी से दें, चुप रहें, गुस्से में जाएं, रोने लगें, सर पीटने लगें, बाल नोचें, कपड़े फाड़े, दीवारों को टक्कर मारें, या आप उठें वजू करके 2 नफिल पढ़ लें, 110% आप अपने कंट्रोल में हैं। तो लिहाजा इंसान को दूसरों के रवैयों का ताबे खुद को नहीं करना, एक हदीस में इसका मफहूम भी मिलता है कि खुद को दूसरों के रवैयों का ताबे ना करो कि दूसरे मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा करूँगा, बल्कि लोग जैसा भी तुम्हारे साथ करें तुम उनके साथ अच्छा करो। इस पे वो मिसाल याद कीजिए जो एक हिकायत है कि एक शख्स कहीं से गुजरे, बुज़ुर्ग थे कोई, तो पानी में बिच्छू को डूबते हुए देखा तो उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने उनको डंक लिया, फिर उन्होंने निकाला, बार बार निकालते जा रहे हैं और उनको डंक मारता जा रहा है। किसी ने कहा अजीब बात है कि वो आपको बार बार डंक मारता है और आप उसको फिर भी निकाल रहे हैं। कहा जब वो अपना जानवरपन होना नहीं छोड़ता तो मैं इंसानियत क्यों छोड़ूँ। मेरी ये खसलत है, उसकी ये खसलत है, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियों को भर देगी। फिर सेकेंड हैबिट के बिगेन विद द एंड इन द माइंड, अपने जहन को पहले से तैयार कीजिए कि आपने गाड़ी का रुख जिधर डाला है आप ठीक जगह पे जा रहे हैं। आप जब भी कहीं जाएं, वट एवर डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, पहले ये देखिए कि रास्ता ठीक भी लिया था कि नहीं लिया था, ये चेक कीजिए। हमारे किबले ठीक हैं, डायरेक्शन ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। हम लोग अक्सर आपस में ऐसी बातें करते हैं कि क्या ख्याल है अभी इसके 3 माह बाद हमारे स्कूल में क्या होगा, 6 माह बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा, लेकिन ये बताएं कि क्या आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सही डायरेक्शन में तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक सकती आगे बढ़ने से, और अगर डायरेक्शन रॉन्ग है तो सारी दुनिया हमारे हक में बातें करेगी तो हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। तो लिहाजा डिफाइन योर मिशन एंड गोल, वैल्यूज़ आर चोजन, जो आपकी वैल्यूज़ है ना, हमें कहते हैं ना हमें अपने ख़ानदानी रिवायात, वैल्यूज़ कहते हैं रिवायात को, ये चूज़ की सेल्फ चोजन है, हम खुद चूज़ करते हैं। प्रोवाइड फाउंडेशंस फॉर डिसीजन मेकिंग अबाउट वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ, अपना मुस्तकबिल का पासपोर्ट अपने हाथ में रखिए, आपको बादशाह बनना है या फ़कीर बनना है, ये आपके हाथ में है। चलिए अब आज थोड़ी सी डिटेल से, तीसरी आदत जो कामयाबी में मददगार होगी, अहम काम पहले कीजिए, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करना। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया था। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप लोग अपने इमेजिनेशन में कोई चीज़ सोचिए, जो मैं बोलूँ उसको जहन में लाइए। आपको छोटा सा हैंड कैरी दिया जाता है, उसका साइज़ भी डिफाइंड है, हैंड कैरी आपको बस उतना ही अलाउ है, सोच लिया आपने, बना लें इसकी एक्टिविटी भी आप बना सकते हैं। कोई आपको कहता है कि ये हैंड कैरी ले लीजिए और इसमें जितना सामान आ जाए ये आप अपने साथ जहाज़ में लेके जा सकते हैं। अच्छा, हमेशा आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ, टिकट्स में लिखा होता है कि इसकी लिमिट है 7 किलो 10 किलो, ऐसे ही होता है ना। इस दफ़ा मैंने जर्मनी से वापसी पे एयरपोर्ट पे एक साइन देखा जिसने मेरी बहुत तवज्जो खींची। उन्होंने साइज़ की बास्केटें बनाई हुई थी कि आपका बैग अगर इसके अंदर आ जाए, और नीचे लिखा हुआ था कि नो वेट लिमिट, वेट की कोई लिमिट नहीं। मैं बड़ी खुश हुई कि भाई वेट की कोई लिमिट नहीं है तो बंदा जितना ले, लेकिन आप वो साइज़ देखें ना तो वो बमुश्किल आपका ब्रीफ केस, आप सोने की डली भी इतनी बड़ी डाल लेंगे तो भी उसमें एक खास हद तक आएगी। चलिए अब आपको ये कहा जाता है कि आप इसमें मैक्सिमम सामान लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएंगे? आप यकीन करें कि जब आप चीज़ों के साइज़ के मुताबिक पैकिंग करेंगे ना, और रुख किताब यूं रखते हैं तो उसके आगे इतनी जगह खाली पड़ती है, और अगर उसका रुख पलटा देती हूँ तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल फिट होती हैं, आप ज़्यादा चीज़ें ले आएंगे। बाज़ लोग सिर्फ ठोंसते हैं, मैं कई दफ़ा देखती हूँ जब लोगों का खुलता है वहाँ बिल्कुल ऐसे लगता है बाज़ ने तो कपड़े उतार के सीधा गुच्छा बना के अंदर डाल दिए हैं, किसने स्लीपर एक दूसरे के अंदर ठोंस के डाले हुए हैं। एक ही साइज़ का सूटकेस होता है, सलीके और नफासत और तरीके से उसमें ज़्यादा सामान आ जाता है नस्बतन बेतरतीबी से। बिल्कुल, अब आप अपनी टाइम का एक सूटकेस बनाएं, हम 24 घंटे को एक सूटकेस में प्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से आप वहाँ चीज़ों को मैक्सिमम ले सकते हैं, आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट के असूल पे काम करते हुए, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। बस दफ़ा आपके सूटकेस में जगह ऐसी होती है कि वो ज़ाया हो रही होती है, कोना सा ही खाली होता है, फ़ौरन माइंड से चेक करें इधर कोई परफ्यूम की शीशी आ सकती है, ये लंबी सी स्लाइड है इसका अंदर कि यहाँ कोई लंबी चीज़ें आ सकती हैं, ये इधर कोना है बच रहा है, लगता है कि इधर अगर मैं कोई अपना एक समझे कि स्काफ छोटा सा तय करके रख दूँ तो आ सकता है। आप ऐसे सूटकेस तय करें कि अगर वो खुल के को पलटाए भी ना तो एकदम ना गिरे, वो इतना पैक हुआ हो। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को भी पैक कर सकते हैं जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, और जितना अहम काम पहले करने की आदत डालेंगे आपके वक्त के सूटकेस में बरकत होती जाएगी। कल का दिन अपना ले लीजिए, अपने सामने रख लें, वो एक सूटकेस था गुजर गया, आप कहते हैं वक्त ही नहीं मिला, आप कहते हैं मसरूफ़ बहुत रहे, आप कहते हैं हम हमेशा लेट होते हैं, आप कहते हैं कि मसरूफियत बहुत होती है, मैं कहती हूँ कि आप पैक सही नहीं करते, क्या ये जुमला ठीक है? पैकिंग गलत है, आपको सेट करना नहीं आता, आपने जो काम शुरू कर लिया था आपका वो उस वक़्त में पूरा होना ही कोई नहीं था, इसलिए आपने उसको पूरा करने में अपने वक्त को आगे कर दिया, लेट हो गए, आपने उस चीज़ को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिया नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि आपकी तरजीहात मुकर्रर नहीं हुई, तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए। क्या आप में से जितने साथी शुरू से इस कोर्स में हमारे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली अब साथी हैं, आप फील करते हैं कि अब उस वक़्त जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था, अहम चीज़ पहले, और अब दोबारा इसको पढ़ने के बीच में आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आई है? हमारी ज़िंदगी अहम, गैर अहम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी के चौकटे में फंसी हुई है। हमारे बहुत सारे वक्त के मामलों क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे सर पे अक्सर बोझ होता है, बहुत कुछ करना है, समझ नहीं आ रही, एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल रहा, खेलने का वक्त ही नहीं रहा, अब तो खाना भी पकाने का वक्त नहीं रहा। गलत बात है, हम गलत कहते हैं। असल बात यह है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। बस आपको देखिए कि 3 घंटे रह गए हैं आपकी फ़्लाइट में, चले घर से निकलने में, आपको पैकिंग भी करनी है, आपको पीछे वालों के लिए कुछ पका खिला के भी जाना है, और घर भी साफ़ करके जाना है। इन 3 घंटों में आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? 3 काम है। नंबर एक, आपकी वो चीज़ें जो अपने साथ लेके जानी है। दूसरी, आपको अपने बच्चों के लिए खाना भी पका के जाना है। और तीसरी बात है, आपको अपना घर भी साफ़ करना है। क्या करना चाहिए आपको पहले? आप देखिए कि ये डिपेंड करता है। नंबर एक ये कि आपको पैकिंग करनी है, दूसरी बात है सफाई करनी है, तीसरा है आपको खाना पकाना है। आपको क्या करना चाहिए? अगर तो इतनी ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें हैं कि आपको डर गया कि पैकिंग में कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? 3 घंटे लें, 1, 2, 3 आवर। असूलन आपका पहला घंटा जो है वो सफाई का होना चाहिए। चीज़ें जब अपनी जगह पे चली जाती है ना, पैकिंग तो झट में हो जाती है। उसी सफाई में जो चीज़ें आपने साथ लेके जानी थी वो आप इकट्ठी कर सकते हैं। पहले भी की होंगी ये, मैं इस वक्त ये नहीं कह रही कि आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया, हम सिर्फ खेल रहे हैं। आप आज भी आजमा के देखिए, घर जाएंगे ना, अगर आपका किचन भी गंदा है, आपको खाना भी पकाना है और मेहमान भी आ रहे हैं, तो आप खाना पकाने की बजाय पहले सफाई कर लीजिए। आप देखेंगे जूं ही आपका किचन साफ होएगा ना, चीज़ें अपनी जगह पे होंगी, झट 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 काम होगा। मैं क्या करूँगी सबसे पहले, लेकिन शर्त यह कि मैं बंद हूँ, ये ना कि सफाई शुरू करूँ और 3 घंटे सफाई में लगा दिए और एंड पे पता चला कि सूटकेस खाली लेके जा रहे हैं। 1 घंटा मैं रखूँगी कि मैंने पहले सफाई करनी है, वो चीज़ें पहले अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करना है, जिसको ये कहना चाहिए। सफाई से मुराद मैं ये नहीं करूँगी कि मैं उसकी झाड़ू पोछा भी करूँ, मैं इस तरह करूँगी कि पहले चीज़ें उनकी जगह पे कर दूँगी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई। फिर सेकंड लेवल पे मैं दूसरे 45 मिनट के बाद क्या करूँगी, अपनी पैकिंग शुरू करूँगी। पैकिंग करने के बाद फिर मैं अगले वक्त में खाना पकाऊँगी, और आखिरी आधा घंटा दोनों 45 45 मिनटों में से निकाल के तो मैं आखिरी वक्त में सफाई का आखिरी टच दूँगी। वाज़े, यानी ये मेरा तरीका होगा, आपका कुछ भी हो सकता है। मैं क्या चाहूँगी कि जब मैंने पहले सफाई कर ली है तो फिर मेरी पैकिंग और खाना पकाने में बिखरावा ना छोड़ जाऊँ। पहले मैंने एक पूरी पैकिंग कर दी, लेकिन सफाई के दौरान कुछ चीज़ें और निकली जो मैंने लेके जानी थी तो वो मेरे साथ नहीं गई। तो डिवाइड करूँगी 3 घंटों को, बजाय इसके कि एक एक घंटे में मैं 45 45 मिनट के अंदर एक काम करके फिर दूसरा, और आखिरी हाफ एन आवर के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं अपनी बाकी सारी चीज़ों को देख लूँ। तो ज़िंदगी में चीज़ों को जब हम वक्त पे करते हैं, उनके हिसाब से करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से बरकत भी बहुत सारी हो जाती है। इस तरह इंशाल्लाह इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा? नंबर एक, प्लानिंग, मंसूबा बंदी। आप पहले से सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना। फिर दूसरी इसमें प्लानिंग में जो चीज़ आएगी वो वीकली प्लानिंग की आएगी, कि आपको देखना है कि आप क्या चीज़ पहले कर सकते हैं, क्या बाद में करेंगे। और फिर इसके अंदर प्लानिंग पे अमल करने के रास्ते में जो रुकावटें आएंगी ना, उसको पहचाने, जो मैंने काम करना था, मेरे रास्ते के प्रॉब्लम्स क्या हैं। मिसाल है कि आप अपने तौर पे तो फुल माशाल्लाह प्लानिंग करके बैठी हुई थी, लेकिन एन उस टाइम पे मेहमान आ गए, या घर के किसी दूसरे शख्स ने आपको किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व कर दिया, तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जब आप ये काम करना चाहेंगे। एक शख्स था, उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, आपको पता है कि सबसे बड़ा पहाड़ है दुनिया में, तो उसने एक जुमला बोला, मैं आपको उसका जुमला पढ़ के सुनाती हूँ। कहने लगा कि मैंने माउंट एवरेस्ट की सूरत में पहाड़ नहीं सर किया, बल्कि अपने आप को फ़तह किया, खुद को फ़तह करता है। कामयाबियाँ जो होती हैं ना, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और एतमाद लाती हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने आप को पहले से ज़्यादा पसंद करेंगे। फिर इस चीज़ के लिए एक और चीज़ अपनी शख्सियत में से थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, और वो है सहल पसंदी, आराम तलबी। हमारी प्लानिंग्स या हमारे प्लान्स कब नाकाम होते हैं? जब हम सारी प्लानिंग करके कहते हैं अब थक गए, ज़रा कमर सीधी कर लूँ, और कमर सीधी करने में आप सो गए, और आप सुस्ती की वजह से अपने ही कामों को सही तौर पे कर नहीं सकते। नतीजा क्या होता है कि हम अपने आप को फिर पीछे रखते हैं। वही कछुए वाली मिसाल ज़हन में रखिए, कि प्लानिंग तो की भी थी जाने की, लेकिन इस तरह से काम नहीं कर सके। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसके अंदर आप अगर अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, एक छोटी सी आपको कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ कि वक्त की कदर जब इंसान को आती है कब, जब हमें उसकी कोई वाकई वैल्यू का पता होता है। 1 साल की कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए, यानी 1 साल कितना अहम है। मैं कल परसों किसी से बात कर रही थी और मैं हैरान रह गई कि दिसंबर आ रहा है, अभी तो सही तरीके से लिखने की आदत भी नहीं पड़ी होती कि अगला साल आ जाता है। हाँ, तो हम कहते हैं साल छोटा है, लेकिन 1 साल की कदर और कीमत क्या है। आप अपने आप को सोचें, पिछले दिसंबर में आपकी सेहत कैसी थी, आपके चेहरे पे कोई झुर्रियाँ तो नहीं थी, आपके सर के बाल कुछ काले तो नहीं थे जब सफ़ेद हो गए। वक्त का पहिया तो घूमे ना, आपका दिल कितनी बार धड़का, आपके कदम कितने उठे, वक्त ने बहुत कुछ आपको दिया। आपने कुछ उस 1 साल को दिया कि ना दिया, लेकिन उस एक वक्त ने आपसे बहुत कुछ ले लिया। तो 1 साल की कीमत उस तालिब इल्म से पूछें जो इम्तिहान में फ़ेल हो चुका है, क्योंकि उसको अब 1 और साल लगाना पड़ेगा। 1 महीने की कदर पहचाननी है तो उस माँ से दरियाफ्त करें जिसने कबल अज़ वक्त बच्चे को जन्म दिया। यानी 1 महीना बच्चा माँ के पेट में रह के बाहर आता तो उसकी टेक केयर आसान थी, लेकिन प्री मिच्योर बच्चा दुनिया में आया तो माँ के लिए वो बहुत बड़ा एक इम्तिहान बन गया। 1 हफ्ते की अहमियत का अंदाज़ा करने के लिए किसी हफ्तावार मैगज़ीन के एडिटर से पूछिए। यानी वीकली रिसाला जब वो निकालता है तो उस एक रिसाले के अंदर उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है 1 वीक के अंदर, इससे आपको 1 वीक की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। 1 दिन की कदरों कीमत से आगाह होने के लिए उस मज़दूर से मिलें जिसके 6 बच्चे हैं, कि 1 दिन कितना कीमती होता है। काम करेगा तो 6 बच्चों के लिए खाना लाएगा, काम नहीं करेगा तो भूखे रहेंगे। 1 घंटे की कदर जाननी है तो उससे पूछिए जो अपने किसी प्यारे का इंतज़ार कर रहा है। फिर देखिए 1 घंटा कितना बड़ा लगता है इंसान को। 1 मिनट की अहमियत जाननी हो तो उस शख्स से पूछिए जिसके सिर्फ 1 मिनट लेट आने पर ट्रेन निकल गई। आप अपने आप को ही देख लें, सामने आपकी ट्रेनें बस से निकल जाती हैं और आप मुंह देखते रहते हैं ये क्या हुआ है। फिर आपको 1-1 मिनट याद आएगा कि मैं नई स्वेटर पहनती जिसकी वजह से 1 मिनट मेरा ज़ाया हो गया, मैं खुला ही जूता पहन लेती ताकि जूता बंद करने का 1 मिनट ज़ाया ना होता। 1 सेकंड की कीमत मालूम करने के लिए उस शख्स से मिलें जो एक्सीडेंट में बच गया हो। सिर्फ 1 सेकंड की देरी से वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता था, लेकिन 1 सेकंड पहले उसने ब्रेक लगा ली तो बच गया। और सेकंड के 10वें हिस्से की कदर से आशना होने के लिए उस खिलाड़ी के पास जाएं जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हो। यानी गोल्ड सिल्वर में बदल जाता है सिर्फ 1 सेकंड का भी कुछ हिस्सा, 19-20 का फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थी ना, इसका ताल्लुक था हमारी अपनी ज़ात तक। हम सब इस पे यही कह सकते हैं कि अल्लाह तू ही हमारे औकात में बरकत दे दे, प्रायोरिटाइज कर दे, जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है उसको आसान कर दे, और अल्लाह ताला से मदद मांगे, अपने अंदर के खौफ को पहचाने जो आपके इन मकासद की रसाई तक आपको पहुंचने से रोक रहा है। सहल पसंदी की आदत को छोड़ना पड़ेगा, टालने की कैफियत को छोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को आखिरी वक्त पे टालने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो उम्मीद की जाती है कि हम इस चीज़ से भी इंशाल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। लोगों के दबाव में आने से बचना पड़ेगा ताकि हम देखें कि कहीं दूसरों के दबाव में हम खुद को तो ज़ाया नहीं कर लेते,